शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच में इंदौर कालानी नगर सेवा केंद्र से आदरणीय जयंती दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी भाई बहन दीदी का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। अभी दीदी जी हम सभी भाई बहनों को बाबा के अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगे। आदरणीय जयंती दीदी जी।
ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे जब से बाबा के बने हैं, हमारे जीवन में अनेक बातों में परिवर्तन आया है और हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाबा की जो अनमोल शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं हैं ही नई दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं है। इस दुनिया की शिक्षा दीक्षा तो हमने जो कुछ पाया था उससे जो आज तक हमारा जीवन बना था, हम सबको महसूस है कितना हमने प्राप्ति की और कितना हमें उस जीवन में सुख मिला। हम सब जब दुखी हुए तब तो बाबा के पास आए ना, तो अब हमें जो कुछ बाबा से मिल रहा है ये अनमोल है और हम बने ही बाबा के इसीलिए हैं कि हमें बाप से वो सुकून मिला। जैसे पहले दिन हम बाबा के बने, बाबा ने हम बच्चों को परिचय दिया कि तुम मेरे हो और मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूं। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। बाबा ने वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान से हम अपरिचित थे। हमें कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम एक आत्मा हो। कोई भी सत्संग में आत्मा की बात नहीं होती है, लेकिन जब हम बाबा के बने, बाबा से जो ज्ञान मिला, बाबा ने एक अलग ही बात कही कि तुम एक आत्मा हो। तुम अपने बारे में जो कुछ बता रहे हो ये तो तुम्हारे इस शरीर रूपी चोले से तुम्हारा एक्टिंग है, तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, बाकी तुम ये नहीं हो। तुम जो हो तुम अमर, अजर, अविनाशी आत्मा हो। उसका ज्ञान पूरा ही अलग था जो हम सबने कभी नहीं सुना था। और जब आत्मा की बात आई और हम आज तक जिस हिसाब से अपने आप को चलाते रहे वो टोटल परिवर्तन हो गया, क्योंकि हम सब तो देह को देखते हुए चलते थे, देह की ही प्रकृति को हम समझते रहे और हम अपने को मैं समझते रहे। लेकिन जब आत्मा की बात आई तो पूरा ही बदल गया, क्योंकि देह को देखते तो देह की जो प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब अपने अंदर आया और इन सब के आधार से हम अपना जीवन बिताते रहे और जीवन की जो प्राप्तियां थी वो इन्हीं विषय विकारों के आधार से प्राप्तियां थी, जिससे हमें दुख मिलता ही रहा, क्योंकि ये हमारी असली चीज नहीं थी, ये तो पराई चीज है, पराया धर्म। इसीलिए गीता में कहा हुआ है स्वधर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। हम पर धर्म को अपनाते रहे, पर अर्थात ये शरीर। अब हमें स्व का परिचय मिला, मैं स्वयं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं और स्वयं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूँ, आत्मा के सातों गुणों का परिचय मिला। अभी तक उन सातों गुणों में से कई चीज हम महसूस करते थे कि ये हमारे पास नहीं है। हम कहते थे हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हम आनंद से रहना चाहते हैं, हमें शक्ति चाहिए। हम इन सब बातों के लिए पुरुषार्थ करते रहे, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं था। और जब ये ज्ञान मिला तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक शांति आने लगी। आप सब भी उसी शांति को महसूस करते हो ना? जब हम सब योग में बैठते हैं तो कितना शांति का माहौल हो जाता है। कोई नया आता है तो वो उस परिवेश में आते से ही चुप हो जाते हैं। महसूस होता है कि यहां तो शांति है। और आप देखो, दूसरे जगह पर जाओ, किसी भी प्रोग्राम में जाओ, किसी आयोजन में जाओ या स्कूल कॉलेज में जाओ, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। इतना शोर होता है, इतना शोर होता है, और यहां जब आते हैं तो एकदम शांति। यहां तो एक छोटा बच्चा भी बैठेगा तो भी उसको ये कहना नहीं पड़ेगा कि तुम चुप बैठो, शांति से बैठता है। तो ये शांति हम आत्मा का स्वधर्म है जिसको हमने आज जाना। और अब बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान से हमें कितने बातों को हमने जान लिया। हम पहले जानते थे कि हम इस दुनिया में ऐसे आए हैं और यहां जो कुछ हमको मिल रहा है ये सब कुछ हमको उपभोग करना है और इसी तरह से हमको चलते रहना है। हमारा जो विचार आचार था, दुनिया के हिसाब से इतना कमाए, इस तरह से रहे, ऐसे पहने, ऐसे चले, ये रस्म रिवाज अपनाए, दिखावा खूब करें, हम अपने आप का शोक बहुत करते थे। जब बाबा ने ज्ञान में हम बच्चों को बिल्कुल भरपूर कर दिया तो हमें आया कि हमें इन सब चीजों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, और सुख शांति के लिए बाबा की याद, जो बाबा ने हमें सिखाया। याद में रहो, शांति मिलेगी। याद में रहो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। सिर्फ याद, बाबा ने एक ही मात्र पुरुषार्थ की बात कही कि तुम मुझे याद करो, और इस याद से हमारा जीवन बदलता जा रहा है। लेकिन याद, उस याद को भी तो हम ठीक से जान लें। हमने देखा इस ज्ञान में आने के बाद कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, अपने जीवन काल में, अपने परिवार में, अपने समाज में बहुत नामी ग्रामी हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनका इतना नाम है। लेकिन जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी बाबा के ज्ञान में ठीक से चल नहीं पाते हैं, और वो उस ज्ञान को ठीक से अपने जीवन में लागू भी नहीं कर पाते। यहां तक कि वो उस जीवन में जो कुछ प्राप्त करते थे, यहां आकर उनको लगता है कि नहीं, सब बेकार है, और थोड़े दिन में वो वापस अपने उसी दुनिया में चले जाते, बाबा का हाथ छोड़ देते। और कई ऐसे अनपढ़ भी दिखे जिन्हें कुछ भी समझ नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, घर परिवार में बहुत मुश्किल से अपने आप को चला पाते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बहुत खुशी से रहते हैं। उनसे पूछो क्या चल रहा है आजकल, बहुत खुशी खुशी जवाब देते, अब तो बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्यों ये परिवर्तन उसके अंदर आया? सिर्फ इतनी सी ही बात कि उस परमात्मा को जो आज हमें अपनाया, जिन्होंने अपनाया, उसको हमने ठीक से जाना, पहचाना, उसको उसी रीति से याद किया। याद का जो तरीका जो हम पहले करते थे, यहां वैसा याद नहीं है। वहां तो हम राम 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 जपते थे या किसी और का नाम लेकर जपते थे, लेकिन जब यहां आए तो यहां कहा ये सब कुछ नहीं करना, तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, तुम अनुभव करो कि तुम एक आत्मा ज्योति स्वरूप हो। बाकी ये कहना भी नहीं है कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, अनुभव करो। और अपने को आत्मा ज्योति स्वरूप महसूस करो, अजर अमर अविनाशी महसूस करो, और उसे अपनी बुद्धि को उस परमात्मा के पास ले जाओ, उनके साथ अपने को जोड़ो कि वो भी ऐसे ही ज्योति स्वरूप है। तो ये जो ज्योति और ज्योति की स्मृति है, इसी से हमारे अंदर शक्ति आती है, और इस शक्ति के आधार से हमें वो शांति, वो शक्ति, वो खुशी, इन सब चीजों की अनुभूति होने लगती है। पहले हम जब राम 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 जपते थे तो वो शक्ति खुशी वो चीज नहीं थी, इसलिए वहां हम भक्ति भी करते आए, पूजा भी करते आए, हम नाम का सिमरण भी करते आए, लेकिन प्राप्ति नहीं, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं कि उनको किस ढंग से याद करना है और वो है कौन। और यहां परिचय मिला और तरीका भी मिला कि कैसे याद करना है। ऐसे भी नहीं कि ओम शांति बोलते रहो या शिव बाबा कहते रहो, कहना कुछ भी नहीं है, महसूस करो, अपने को उनके पास लेकर के जाओ, महसूस करो कि उनकी किरणें हमारे ऊपर आ रही है, महसूस करो, और क्या मिल रहा है, महसूस करो, अनुभव। तो यहां हमने किया आत्म अनुभूति, और इस आत्म अनुभूति से हमें सुख मिलने लगा, तब हमारे अंदर से ये बात निकलती है कि भगवान मिला, सब कुछ मिल गया, वहां ये चीज नहीं मिली थी। और फिर उसके बाद, ये तो उसको याद करने का सुख, उसके बाद उसकी जो बातें हैं, जो अपनी आत्मा के लिए बातें हैं, क्या करना, कैसे चलना, आप सोचो, बाबा मुरली के माध्यम से हमें पूरी दिनचर्या बता रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक। तुम अपने समाज में, अपने दुकान में, अपने कार्य क्षेत्र में तुम कैसे बोलोगे, कैसे रहोगे, कैसे चलोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, किस तरह का व्यवहार करोगे, बाबा एक एक चीज मुरली के माध्यम से बताते जा रहे हैं। और जब उन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें हर जगह से सफलता मिलती है, हर कार्य क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पहले हमें कहीं से कुछ नहीं मिलता था, हम कोई भी नौकरी करने जाते थे लेकिन हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे, या थोड़े समय के बाद नौकरी ही छोड़ देते थे, मजा ही नहीं आता था, कहीं भी टिक नहीं पाते थे। लेकिन ज्ञान में आने के बाद, बाबा की याद से, वहां अब बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और जो हमारे बॉस हैं वो हमें बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो गुण देखते हैं, दूसरों में वो गुण नहीं होते हैं। हमारे अंदर से उनको बहुत कुछ महसूस होता है, हमारे को ऐसे लाइक करते, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हर बात में हमको आगे करते हैं, जो पहले नहीं था। इसीलिए अभी नौकरी धंधा भी हमारा सेट हो गया है। कितने ऐसे मिलते हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद आगे बढ़ गए। हमें तो उन लोगों को भी, हमारे पास आते हैं कई लोग, वो अपनी बातें बताते हैं कि पहला जो जीवन था, हम जो कुछ भी कमाई करते थे उस कमाई से अपने घर का व्यवस्था जो था वो जैसे तैसे चलता था। लेकिन जब ज्ञान में आए, बाबा की पहचान मिली, अपने ईश्वरीय परिवार को जाना और ये महसूस हुआ कि बाबा के पास आते हैं, बाबा को कुछ तो देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। देखो, जिनकी भगवान से प्रीत हो जाती है वो भगवान के हर कार्य में मदद करना शुरू करता है। ये बाबा का घर है, हमें बाबा के लिए करना है, सोचना है। तो ऐसा सोच जब अपने अंदर आता है तो बाबा के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करता है। मुझे मालूम है एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान में आने के बाद जो कुछ मिलता था उसमें से थोड़े से पैसे से वो सोचता था दीदियों के लिए कुछ लेकर जाऊं। आज ऑफिस से लौटते हुए मैं उनके लिए कुछ लेके जाऊं और कुछ ना कुछ, कभी फ्रूट, कभी सब्जी, कभी कुछ लेकर आता था। ऐसा चलता रहा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, थोड़ा थोड़ा लाता था। बाबा को भोग लगा देना, ये आज हमारी तरफ से बाबा को खिला देना, दूध लेकर आए या कुछ भी लेकर आए। उनके घर परिवार की स्थिति बदल गई। पहले जैसे तैसे चलता था लेकिन अब उसको ऐसा लगता है जैसे कि परिपूर्ण है, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो, भगवान जिसका लेता है उसको वो भरपूर करके देता है, वो रखता नहीं है। तो अपने आप उसकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई, उसका घर परिवार अपने आप व्यवस्थित हो गया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। ऑटोमेटिक उसके घर में सब चीज व्यवस्थित होने लगी, सब काम आराम से होने लगा, उसको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आई। लेकिन पहले दिक्कत थी। तो उसको समझ में आया कि अरे, भगवान की सेवा हम करते हैं तो भगवान तो हमारी करता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप उसके लिए करोगे तो वो आपका भरपूर कर देगा। तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा, पर दो तो सही। और वो देना कब होता है? जब उसके लिए प्रीत जुटती है। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना जितना हमारी प्रीत उसके साथ जुटती जाती है, उतना उतना हमें मिलना शुरू हो जाता है। और हमारे अंदर ये जागृति आती है कि मुझे देना है। क्योंकि जब उससे प्रीत होता है, आप लोगों को भी ये पता होगा, एक नेचुरल नियम है, जिससे प्यार होता है ना उसको देते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से प्यार होता है, उसको आप कुछ भी दो वो आपको पकड़ लेगा। उसी तरह से जब हम शिव बाबा को देते हैं तो बाबा भी हमारा करना शुरू कर देता है। और बाबा का तो ये कहना ही है कि बच्चे, तुम्हारे लिए मैं आया हूं, तुम मुझे जब याद करो, जैसे याद करो, जिस परिस्थिति में याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम्हारी वो बिगड़ी हुई परिस्थितियों को मैं ही संभालने वाला हूं और कोई नहीं संभालने वाला। लेकिन हम ऐसे तुच्छ बुद्धि होते हैं कि हम उनको उस परिस्थिति में याद नहीं करते। उस समय हमें कोई और याद आता है, कोई बड़ा व्यक्ति को याद कर लेते हैं, कोई और साहब को याद कर लेते हैं। परंतु अगर हम सिर्फ उन्हीं को याद करें तो हमारा काम सफल हो जाता है। बहुत समय पहले मैं जब ज्ञान में आई थी, शुरू शुरू की बात है, एक सेंटर पर मैं थी, वहां से हम थोड़ी दूर पर एक गीता पाठशाला में जाया करते थे। तो कुछ कारण से उस गीता पाठशाला में 2-3 मास तक मेरा जाना नहीं हुआ। एक दिन मैं गई तो मैंने सुना कि इसका घर पूरा भरपूर हो गया। भी क्या हो गया, क्या कारण था, तो हमको बताया। पता है दीदी क्या हुआ? कि इस ये जो बहन है जिसके घर में आप आए हो, इस बहन के घर में इसके बेटे की शादी थी। तो मैं जब जाया करती थी तब मैंने सुना था कि बेटे की शादी की तैयारी चल रही है। पुलिस की बेटे की शादी थी और शादी का दिन करीब आ गया, बहुत करीब आ गया दिन, अभी 3 दिन ही बाकी है। तो उन लोगों ने, उसके जो हस्बैंड थे वो फैक्ट्री में काम करते थे, तो उन्होंने बोला हुआ था कि भाई बच्चे की शादी है, हमको लोन चाहिए, तो उनको लोन मिलने वाला था, इतने पैसा जितना उसने बोला हुआ था मिलने वाला था। परंतु शादी के 3 दिन पहले उनको मालूम पड़ा कि लोन सैंक्शन नहीं होगा, किसी कारण से उसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 1-2 मास के बाद पूरी हो पाएगी, तो अभी उसको लोन नहीं मिलेगा। इधर शादी का दिन बिल्कुल नजदीक, 3 दिन बचे हैं, अब मेहमान का आना शुरू हो गया है, इनके घर में अब कोई शादी के लायक सामान नहीं, ना अनाज है, ना कोई व्यवस्था है, ना शादी की कोई तैयारी है, ना रुपया पैसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये 3 दिन पहले जब मालूम पड़ा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेहमान सारे आ गए और मेहमान देख रहे हैं कि कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई वो खाना बनेगा, इतने लोगों का खाना बनेगा, पर आपके पास तो आटा इतना है ही नहीं, चावल इतना नहीं है, दाल नहीं है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो बहन भी परेशान हो रही थी, तो उसने क्या किया, सवेरे सवेरे उठकर 3 बजे वो बाबा के पास बैठ गई, 2 ही दिन बचे हैं, बाबा के पास बैठ गई और बस बैठी रही। दिन हुआ, सवेरा हुआ, लोग उठे, जैसे तैसे चाय कुछ थोड़ा थोड़ा बना के पी लिया, इतना था ही नहीं सबके लायक, चलो कैसे भी दिन तो निकला। उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी भी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ था आटा वाटा लेकर के, कुछ रोटी पराठा कुछ बनाया गया। तो ऐसे मेहमान लोग कर रहे हैं, पर वो बहन बैठी हुई है, वो उठी नहीं। और जो उनके पति थे वो अपना फैक्ट्री चले गए। अब दिन निकलता गया, सब लोग खुसुर खुसुर करते रहे, खाना बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, सब लोग चुपचाप बैठे हैं और सब आपस में बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए, शादी का घर है और ये भी इस तरह से बाबा के पास जाकर बैठ गई अपना, और कुछ कर भी नहीं रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, चुपचाप बैठी है। वो बैठी रही, दिन के ठीक 12 बजे एक बड़ा सा ट्रक उनके घर के सामने आकर खड़ा हुआ। ट्रक से ड्राइवर उतरता है और एक पर्ची दिखाता है और बताता है कि ये सामान साहब ने भेजा है, आप इस सामान को अपने घर पे रख दो। साहब का नाम जो था वही लिखा हुआ था, तो आप ये सामान सब रख लो। तो सब लोग बोले कि हाँ ठीक है, फैक्ट्री से सामान भेज दिया है। तो सब लोग खुश हो गए, जल्दी जल्दी से सामान में सारी चीजें थी, अनाज से लेकर हर चीज था, हाँ उसमें तेल, घी, शक्कर, साबुन, पेस्ट वेस्ट जो भी चाहिए, यहां तक कि दूल्हे के कपड़े लत्ते, हाँ सब तैयार, हाँ गहने भी, हाँ जो सगाई में उसको पहनाया जाएगा दुल्हन को, वो भी सब चीज उसके साथ ट्रक में भरकर आए। तो लोगों ने सोचा कि तुम बहन को उठाया कि देखो भाई ये सामान आपके पास आया है, पर्ची बता रहे हैं ये आपके हैं, तो उसने देखा बोले हाँ हाँ ये तो उनका ही नाम है, लाओ ठीक है। सामान सब रख दिया गया, सब रख दिया गया, सब खुशी खुशी सामान, सब दाल निकाला, चावल निकाला, आटा निकाला, काम शुरू हो गया, सब मिलकर के खाना बनाना शुरू किया, खुश हो गए कि सामान सब आ गया, अब कोई बात की चिंता नहीं। इधर साहब आए 1-1.5 बजे तक, साहब आए तो आके बोले ये क्या है इतना सारा सामान कैसे, तो बोले आपने ही तो भेजा। बोले मैंने तो कोई सामान नहीं भेजा। बोले ये देखो पर्ची है, पर्ची। बोले नहीं नहीं ये कोई और का होगा, मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा। बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। बोले नहीं मैंने नहीं भेजा है, ये सामान मेरा नहीं है। और फिर वो चिल्लाने लगे कि भाई देखो तुमने किसी और का सामान रख लिया, मेरे से पूछना तो था। अब उस जमाने में कोई ऐसा मोबाइल तो था नहीं, पूछा ताछी के लिए भी वो डायल टोन वाला होता है ना, जो रिंग करते हैं घुमा के, वो वाला फोन होता था। तो बोले पूछ तो लेते, अब ऐसे तुमने रख लिया, अब किसी का होगा तो वो हमारे ऊपर क्लेम करेंगे, हम और परेशान हो जाएंगे। तो बोले अभी चुप रहो, अभी तो काम शुरू हो गया, अब चलो काम तो हो जान दो, देखा जाएगा बाद में, अभी अपना काम तो हो जान दो। तो काम सारा हो गया, पूरा काम हो गया, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और बोले दीदी 2 महीना हो गया, अभी तक कोई भी बोलने नहीं आया कि ये हमारा सामान है, और हम अभी तक सोच में है कि जिसका सामान है वो लेने आएगा। तो मैंने कहा अब कोई नहीं आएगा, आप शिव बाबा के पास बैठी थी ना तपस्या करते हुए, तो शिव बाबा ने आपका काम करा दिया, भेजा उन्होंने, शिव बाबा की तरफ से आया है सामान सारा, और आपका काम पूरा हो गया। बस अब आप निश्चिंत रहो, बाबा की याद में रहो, बाबा की श्रीमत अनुसार चलो, आपका काम तो पूरा हो गया। तो ऐसे ऐसे बाबा अपना काम कराते हैं, और बाबा अभी इस संगम युग पर हमारे साथ हैं, और बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। आप देखो रोज की मुरली, आप गहराई में जाओ, बाबा कितनी बातें अब सुना रहे हैं। हम इस समय ईश्वरीय संतान बने हैं, बाबा के बच्चे। बाबा ने जो विशेष ज्ञान दिया, कौन सा ज्ञान, जिसके लिए हमने उसको बुलाया, पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, हमें सुख शांति की दुनिया में ले चलो। तो बाबा का ज्ञान है पावन बनाने का, जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। पावन तो सोच भी नहीं सकते, और आज इस कलयुग के अंत में तो पवित्रता का नाम निशान नहीं है। अब तो चारों तरफ जहर उगल रहा है, आग लगी हुई है दुनिया में, देखो कितने अपराध होते जा रहे हैं। और बाबा हम बच्चों को कितना सुंदर दुनिया की तरफ मोड़ रहे हैं कि उस दुनिया में चलोगे जहां कोई प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई चिंता, कोई फिकर, कुछ भी नहीं होगा। तुम सिर्फ जो मैं कहता हूं वो तुम सुनो, वैसा करो, तो तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। तो शिव बाबा देखो रोज प्रतिदिन मुरली में आप बाबा कितनी गहरी गहरी बातें कहते हैं, और उन बातों को जितना हम जीवन में लागू करते हैं, हमारा जीवन तो भरपूर हो रहा है, लेकिन माया भी साथ साथ है। वो भी पूरी तरह से हमको उसी रास्ते पर चलने थोड़ी देती है, कुछ ना कुछ अड़ंगा डालती ही है। और बाबा ने ये भी कहा हुआ है, बाबा जरूर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, बाबा के इतने बच्चे हम सब बनते जा रहे हैं, परंतु पहुंचेंगे तो वही जो पूर्ण रीति से सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान दुनिया में पहुंचेंगे, तो जरूर माया भी तो परीक्षा लेगी। और बाबा कहते हैं माया मेरी पक्की बच्ची है, माया भी परीक्षा लेगी। तो माया भी अपना काम करती है, जहां देखती है थोड़ा बहुत ढीलापन आया, माया उसको खींच लेती है, और बाबा की वो पक्की बच्ची है। अभी आप देखो जितना जितना समय गुजरता जा रहा है, माया का प्रकोप बहुत तेज होता जा रहा है। संसार में आज आकर्षण की अनेक बातें हैं, अनेक बातें हैं, पहनावा, अपना जो भी कमाना है, कमाई में भी बहुत अच्छा, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है, पहनावा ओढ़ना है, बहुत लग्जरियस जीवन हो रहा है, घर माहौल में, घर में भी माहौल अच्छा बनता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे हैं, तो माना ऐसा लगता है कि घर परिवार में भी वो सुख हमको मिलता जा रहा है। तो जो बाबा ने हम बच्चों को दिनचर्या बताई, उस दिनचर्या में हमारा पढ़ाई प्रमुख है। ये पढ़ाई, जो पढ़ाई हमें रत्नों से भरपूर करने वाला है। दुनिया में भी कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो जो पढ़ाई है उस पढ़ाई से हम कुछ नवाब नहीं बनते, हाँ लेकिन हम कमाई के लायक बन जाते हैं, और इसीलिए कहा ही जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज कमाई का साधन जरूर है, लेकिन वहां पर हम कोई रतन नहीं कमाते। लेकिन ये जो पढ़ाई है, बाबा की पढ़ाई, इसमें हमें रतन मिल रहा है। एक एक बाबा के जो वचन है वो हमें रत्नों के बराबर माला माल करने वाला है, और जिसे हम सबको पहचानना है। और इन रत्नों के पीछे माया भी पड़ी रहती है कि अगर ये रत्न पा लेंगे तो ये मुझे छोड़ देंगे, तो इसीलिए वो भी अपना काम करती रहती है, रत्नों की प्राप्ति में वो भी अड़ंगा डालती है। तो आज कलयुग के अंत में ये माहौल बहुत बढ़ता जा रहा है। भले हम बाबा के बच्चे हैं, परंतु कारणे अकारणे क्लास मिस करते हैं। बाबा ने कहा हुआ है, तुम मुरली को जरूर पढ़ो, सुनो, मुरली का अध्ययन करो, लेकिन हम उस मुरली को ही छोड़ देते हैं। जो मुरली हमें माला माल करने वाला है, इतना माल आप देखो, सतयुग में कोई गिनती नहीं होती है पैसों की। पैसों की गिनती तो इस कलयुग में है, लेकिन सतयुग में गिनती नहीं होगी। अथाह अकिचार खजाना होगा, और वो खजाना हमको यहां इस ज्ञान से प्राप्त हो रहा है। और ये ज्ञान हमें क्या सिखाता है, बाबा जो बातें बता रहे हैं उसको जीवन में लागू करो। बाबा ने बताया, तुम मेरी सुनो, मैं जो कहता हूं वो करो, दुनिया की आज तक जो सुनते आए हो वो सब तुम्हें दुखों की तरफ ले लिया, अब तुम्हें मैं सुख की दुनिया में ले जा रहा हूं, तो तुम मेरी सुनो। लेकिन हम क्या करते, मुरली मिस करेंगे, एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर कोई ना कोई बात आएगी, फिर मिस करेंगे, दो तीन दिन मिस हुआ तो आदत में आ जाएगी, और आदत जब पड़ जाती है मिस करने की तो हमको कोई ख्याल नहीं रहता है। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, चले जाएंगे, दिन में कभी भी जाने के लिए बाबा ने बोला है, चले जाएंगे। जाके थोड़ा सा मुरली देखा किया, वो कोई अंदर तो गया ही नहीं, लेकिन जो क्लास होती है ना बाबा की, उस क्लास में हमारे अंदर बातें जाती हैं। क्लास में उन बातों को विशेष रूप से गहराई से समझाया जाता है, तो बातें हमारे अंदर प्रवेश करती है। लेकिन हम उस क्लास को मिस करके कभी भी चले गए, मुरली उठा के पढ़ लिया, तो एक नियम प्रमाण हो जाता है, वो हमारे अंदर नहीं जाता है। और जिसके कारण जब ऐसा मिस होना शुरू होता है तो हम कुछ न कुछ गलत करना शुरू करते, क्योंकि माया का प्रभाव होता है, और माया हमसे गलत कर्म कराएगी, और जब कराती है तो उस समय तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है, अरे ये तो हमने भूल कर दिया। हम देखो आज फलाने के साथ उस जगह पर चले गए, और जहां पर हमारे लायक कोई काम नहीं था, आलतू फालतू बातों में समय चला गया, न ज्ञान था न योग था, बाद में महसूस होता है कि हमने कितना गंवा दिया। तो इस प्रकार से हम आज कलयुग के अंत में माहौल बदलता जा रहा है। पहले भी जो रस्म रिवाज थे, अब उस रस्म रिवाज में और भी वृद्धि होता जा रहा है। अभी देखो, जैसे कोई गमी हो जाती है, तो गमी होने के बाद लोग क्या करते हैं कि बाबा का घर छोड़ देते हैं, भाई हमको सवा महीना, आजकल सवा महीना कहते हैं, हमको निकलना नहीं है, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं है, हमें अपने घर में ही रहना है, क्योंकि घर में गमी हो गई है। अब सवा महीना तक ज्ञान नहीं सुना तो क्या सुना होगा, माया की बातें सुनी होगी, कलयुगी दुनिया की बातें सुनी होगी, आपस में इसकी उसकी परचिंतन की होगी, और ये जो चीजें हैं ये हमें क्या देगा, सुख देगा या दुख देगा, या हमारे कर्म में कोई श्रेष्ठ कर्म कराएगा, ये कोई भी अच्छा कर्म तो हमसे कराएगा नहीं, बल्कि हमसे कोई ना कोई गलत काम करा ही लेगा। गलत काम क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत कुछ न कुछ हम कर ही लेंगे। कुछ कुछ नहीं तो हम लोभ में आ जाएंगे, लालच में आ जाएंगे, अरे इतना उसको मिलता है, हम भी अगर उस वहां पर पहुंचे तो हमको भी मिलने लगेगा, वो ऐसा करता है हमको भी करना चाहिए, यानी हम फिर दुनिया को देखना शुरू करते, आस पड़ोस को देखना शुरू करते और बाबा को अलग करना शुरू करते हैं। बाबा हमें कहां ले जा रहा है और हम फिर कहां फंस जाते हैं। तो दुनिया में ऐसे अनेक जंगलों में हम भटकने लगते हैं, फिर बाबा तो हमको हाईवे में ले जा रहे हैं, इस रास्ते से चलो, ये रास्ता तुमको मंजिल पर पहुंचा देगी, लेकिन हम फिर इधर उधर करना शुरू कर देते हैं, इसकी उसकी बातों में आ जाते हैं और ये हमें कहां से कहां पहुंचा रहा है। आज जैसे कई कहते हैं, पहले बाबा के ज्ञान में आए तो कहे अब तो कुछ भी चीज नहीं चाहिए, बस बाबा मिला, सब कुछ मिल गया, अब तो अपना समेटना शुरू करो। और बाबा यही कहते हैं कि जो कुछ है अब सफल करो, क्योंकि जो सफल करोगे तो तुमको सफलता मिलती जाएगी, लेकिन सफल नहीं करोगे तो बुद्धि फंसी रहेगी, और बुद्धि अगर फंसी रहेगी तो फिर तुम निकल नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं फंसते ही चले जाओगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को दिशा दे रहे हैं, लेकिन हम वो दिशा को भूल जाते हैं क्योंकि माया का प्रकोप है और कहीं ना कहीं उन बातों में आ जाते हैं। कई कहते हैं पहले कि भाई ठीक है, अब तो अपना जीवन ठीक हो गया, बाबा मिल गया, अब हमें समझ में आ गया, अब हमको और बातों में नहीं जाना है, हमको बहुत इधर उधर भी नहीं करना है, अब हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, बस हम हैं और हमारा बाबा है, मुझे बाबा की सेवा करना है और अपने को ठीक रखना है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर देखते हैं उसका बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ रहा है, चलो ठीक है आगे देखा जाएगा। अब वो बेटा पढ़ते पढ़ते इधर उधर कहीं हो गया, अब जब इधर उधर हो गया, किसी गलत संगत में फंस गया, तो अब बाप चाहता है कि नहीं वो इंजीनियर ही बने, और उसको इंजीनियर बनाने के लिए वो अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं रिश्वत देना शुरू करते हैं, और करते करते वो अपना ही अपने आप को उसमें उलझा देते हैं। और उसके बाद भी बेटा तो जो रास्ते पे गया वो तो गया ही, न वो अपने रास्ते पर आ पाया और न उसको इंजीनियर बना पाया, लेकिन क्या हो गया, बीच में से डामाडोल हो गया, न तो वो बाबा को ठीक से पकड़ पाया, अब बाबा एक तरफ किनारा हो गया और वो अपना दुख झेल रहा है, क्योंकि उसके पैसे भी फंस गए, बच्चा भी आगे कुछ करा नहीं, वो भी बिगड़ गया और उसका पैसा भी फंस गया, कुछ काम का हुआ ही नहीं। तो इस तरह से कई इधर उधर की बातों में चले जाते हैं। अब जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया, यही तो माया है जो हमें परीक्षा लेती है कि हम किधर हैं, हम बाबा के हैं या हमें अभी भी दुनिया या दुनियादारी में देखना है, उसकी तरफ जाना है। ठीक है इंजीनियर बनना है, बन जाएगा, अगर हमने देखा कि वो है ही नहीं, वो अपना रास्ता चेंज कर लिया, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इसके उसके में फंस गया, कहीं इसके उसके साथ चला गया इधर उधर, तो अब हम फिर से उन बातों को लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारी भूल है ना। तो हम इन बातों को पकड़ नहीं पाते हैं, बाबा का बच्चा बनने के बाद भी हम ऐसे फंस जाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा। और ये चीज जो है, बाबा ने कहा हुआ है कि माया का प्रकोप इतना होगा कि बाबा का ये जो झाड़ है ना, ये हिलने लगेगा, और ये सारे के सारे उस सतयुग में पहुंच पाए मुश्किल है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हमें तो सतयुग तक जाना है, और बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि जो लास्ट तक रहेंगे उसको बाबा मोटा खाना मोटा पहनना ये देंगे, लेकिन अगर हम बीच में ऐसे वैसे में इधर उधर जाना आना शुरू करें, इसको उसको देख करके हम अपने आप को कहीं और उलझा दें, तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी, हम तो निकल के चले गए। बाबा का साथ लेते लेते भी हमने बाबा का साथ छोड़ दिया, तो ये गलती किसकी है? हमारी है ना। तो अब जो समय आ रहा है, ये समय बहुत भयानक आ रहा है, और ये समय माया का प्रभाव बहुत है। कहीं हम बाबा के चलते चलते, बाबा के रहते रहते हम अपना रास्ता चेंज न कर लें, न हम बदल जाएं, न हम माया को पहचान पाएं, ऐसा हमें अपने आप को बनाना चाहिए। और उसके लिए ही बाबा कहते, तुम निरंतर मुझे याद करो और अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहो। बाबा के समय की जो मुरलियां हैं, खास बाबा देखो ड्रिल भी कराते हैं, वो किस लिए? अशरीरी बन जाओ। अशरीरी माना अपने आप को शरीर से निकाल दो, मैं आत्मा अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, डिटैच हो जाओ। शरीर के भान में रहोगे तो शरीर की अनेक बातें याद आएंगी। सबसे पहले देह और देह के साथ देह के संबंध, मैं और मैं के साथ मेरा जो है, मेरा घर परिवार बाल बच्चे, इनमें ही बुद्धि जाती है। तो इन सब को मैं डिटैच कर पाऊं, इसके लिए घड़ी घड़ी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, तो इन बातों से बच जाएंगे। लेकिन हम इन बातों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, और इसी वजह से हमारा रास्ता भटक जाता है। तो बाबा कहते कि ये झाड़ हिलेगा, और पता नहीं कौन कहां गिरेगा, कौन कहां गिरेगा, किसकी कैसी स्थिति होगी अंत तक। हम ये चाहते हैं कि हम अंत तक बाबा के बने रहें, बाबा की श्रीमत अनुसार चलें, और हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लें। और प्राप्ति हमारे जीवन में है, ये तो अवश्य है, लेकिन हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते, हम इसको उसको देख करके फिर अपने को बदल देते। और बाबा ने कहा है, तुम किसी को भी नहीं देखो, तुम देखो तो मुझे ही देखो, सुनो तो मेरी ही सुनो। इसीलिए बाबा ने कहा हुआ है, हियर नो इविल सी नो इविल। इसका मतलब क्या है? इविल क्या है? कलयुग पूरा ही इविल है ना, तो कलयुग की हर बातें इविल, कलयुग की हर दृश्य इविल, कलयुग की जो भी सोच है वो भी इविल है, वो भी हमें बुराई की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो बाबा कह रहा है वो सारा ही सत्य है, जो बाबा कह रहा है वो सारा ही हमको मिलना है, और हम वो चीजों को प्राप्त करना भी चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए वो नई दुनिया का सुख, जिस सुख को हम सिर्फ एहसास करते हैं, लेकिन वो सुख को हम अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए ही बाबा ये सारा पुरुषार्थ की बातें बताते कि तुम अब ऐसे अपने को अशरीरी बना लो, अपने आप को सदा ही बाबा की याद में रखो, बाबा की क्लास कभी मिस नहीं हो, बाबा को साथी बनाकर चलो, कोई भी बात ऐसी आए उनको याद करो। और हम लोग भूल जाते हैं। देखो एक कहानी है, एक प्रसंग है, महाभारत में एक कहानी बताते हैं कि जब पूरी लड़ाई हो गई, जो कौरव पांडव की लड़ाई थी वो लड़ाई पूरी हो गई और कौरव कुल खत्म हो गया और पांडव जीत गए, तो ये पांडव सारे श्री कृष्ण के साथ एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे, उसी लड़ाई की बातें कि ये हुआ वो हुआ। तो उस बातों के बीच में द्रौपदी बोलती है कि हे केशव, श्री कृष्ण को बोलती है, हे केशव आप तो हमारे भगवान हो, आप हमारे लिए सब कुछ हो, हमारा साथ आपने ही दिया और आपने ही हमें विजय भी प्राप्त कराई, सब कुछ आप करते हो लेकिन बहुत देर से करते हो, शुरू में नहीं करते हो, देर से करते हो। तो श्री कृष्ण तुरंत कहते हैं, देर से कहां मैंने देर किया, किस बात में मैंने देर किया? तो द्रौपदी कहती है याद करो, जिस दिन दुर्योधन मुझे पकड़ कर ले आया सभा में उस दिन की बात याद करो। तो बोले हां बताओ फिर क्या हुआ। तो बोले उस दिन तुम कब आए, तुमने कहा उस समय, तुम कितना देर से आए, कितना मैं परेशान हुई। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हां उस दिन की बात याद करो, उस दिन जब दुर्योधन तुमको पकड़ने आया, तुमको पकड़ कर ले गया, तुम सभा में पहुंची तो तुमने क्या किया, तुम सबसे पहले तो अपने उनको याद किए, पितामह को याद किया, कृपाचार्य को याद किया, द्रोणाचार्य को याद किया, अपने पांचों पतियों को याद किया, जब कोई ने साथ नहीं दिया तब लास्ट में तुम मेरे पास आए, और मेरे पास आते मैंने तुरंत तुमको सहयोग किया। तुम शुरू में आ जाती, दुर्योधन तुम्हारे पास जैसे ही पहुंचा तुम तुरंत मुझे याद करती, तो दुर्योधन तुमको यहां सभा में भी नहीं ला पाता। पर तुमने तो ऐसा किया ही नहीं, तुम याद करो तुमने कब किया, देर तो तुमने की, मैंने थोड़ी देर की। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे भूल जाते हो, तुम भूलो नहीं, कदम कदम पर मुझे याद करो तो तुम्हें हमेशा सहयोग भी मिलेगा, मदद भी मिल जाएगी। तुम ही भूल जाते हो, और सचमुच हम ही लोग तो भूलते हैं। अगर हम अभूल हो जाए तो आज ही परिस्थिति चेंज हो जाए, पर हम सब भूले हुए हैं अभी भी। वो भूल हमारी सुधर जाए, हम हमेशा हमेशा के लिए बस बाबा को ही पकड़ के रखें और किसी को ना देखें, कोई हमारा नहीं है। देखो अंत घड़ी जब होगी, अंत घड़ी में ना हमारा कोई साथी होगा, ना हमारा कोई घर का व्यक्ति होगा, हमारा परिवार का कोई सदस्य हमारा साथ नहीं होगा, ना धन दौलत हमारा साथ देगा, ना जमीन जायदाद हमारा साथ देगा। साथ कौन देगा, हमारी खुद की स्थिति, ये सब कोई हमारा साथ उस समय नहीं दे पाएगा। कोई धन दौलत आपको बचाने नहीं आएगा, कोई परिवार का सदस्य भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो वो अंत की तैयारी हमारी कहाँ है, वो अंतिम समय की तैयारी सिर्फ बाबा की याद और बाबा की श्रीमती के दे सकती है ना। जो बाबा के दिया हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान ही हमको वो चीज दे सकता है जो हम अंत में भी स्थिर रहे, अंत में हम गिर नहीं जाए, अंत में हम भूल ना जाए। वो गिरावट को रोकने के लिए ही बाबा अभी से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, परंतु हम भूल जाते हैं। तो अंत की तैयारी के लिए अभी हमें तैयार होना है। समय भी हमें चेतावनी दे रहा है कि ये सब चीज तुमको मिलने वाला नहीं है। देखो आज समय कितना बदलता जा रहा है और कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। प्रशासन बदलता जा रहा है, नियम कानून बदलता जा रहा है, हर दिन चेंज होता जा रहा है। पीछे की कोई बात हम लेकर अब नहीं चल पाते, जो अभी वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से ही हमको चलना होता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं अंत के लिए कि तुम अंत में पास हो जाओ तो नई दुनिया में जाओगे, और अंत में अगर फेल हो गए तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा नहीं चाहता है, बाबा तो चाहता है मेरे बच्चे सब राजा बने, सब उस नई दुनिया में आराम से पहुंच जाए, और हम उस आराम को ले सके, ये बाबा की चाहना है। और बाबा की चाहना को हम पूर्ण कर लें तो हम बाबा के ऐसे राजा बच्चे बन जाएं जो हम अंत में अपने आप को स्थिर रख सके, और उसके लिए हमें बहुत बहुत योग का अभ्यास करना है। और अब तो समय ऐसा है कि हमें ऐसे समय पर बाबा के उन बातों को लेकर हर बातों को क्रॉस करते जाना है। बातें बहुत आएंगी, माया की परिस्थितियां बहुत आएंगी, हर जगह हमको कोई ना कोई अड़ंगा मिलेगा, लेकिन फिर भी हम निकलते जाएं, क्योंकि बाबा ने हमको सारी बातें बताई हुई हैं कैसे हम क्रॉस कर लें, कैसे हम पास हो जाएं। तो ऐसी अगर हम चलते रहें तो हम हमारी दिशा को प्राप्त कर लेंगे और हमको वो पद भी मिल जाएगा, हम पास हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपना तन, अपना मन, अपना धन सफल कर रहे हैं। जो कुछ बाबा से मिला हुआ है हम बाबा के लिए कर रहे हैं कि अभी भी हमारा कहीं ना कहीं जा रहा है? अगर जा रहा है तो हम गंवा रहे हैं, अगर बाबा के लिए जा रहा है तो हमारा सफल हो रहा है। और उसकी निशानी है कि जितना बाबा के लिए करेंगे हमारे अंदर खुशी भरपूर होती जाएगी और हमारे सामने की स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छा होता जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम जैसे उड़ रहे हैं, हमें हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। और अगर हम बाबा के लिए नहीं औरों के लिए करते जा रहे हैं, दुनिया दुनियादारी के लिए करते जा रहे हैं, तो आपको हर कदम पर रुकावट महसूस होगी। आपको लगेगा कि ये हमारे चीजें जैसे हमको रास्ता नहीं दे रहा है और इसमें लगेगा कि हम जैसे उड़ते जा रहे हैं। और इन चीजों को अनुभव करना बहुत जरूरी है, इसलिए बाबा ने हमें हर बातों की शिक्षा दी। अभी भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम अपने संकल्पों को भी चेक करो, तुम्हारा संकल्प क्या चल रहा है, अपने अंदर का विचार कैसा चल रहा है। हम पहले जो विचार करते थे इसके उसके उसके लिए कई प्रकार की बातें सोचते हैं, लेकिन अब बाबा ने कहा है कोई कैसा भी हो लेकिन तुम्हारे अंदर से हरेक के लिए शुभ भावना शुभ कामना हो। और आपको मैं बताऊं, ये शुभ भावना शुभ कामना इतना फलीभूत है जिसे हम कोई और उपायों से पूरा नहीं कर पाते, सिर्फ शुभ भावना से पूरा कर पाते हैं। हमारे सेंटर के सामने एक मकान है, उसमें जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ये पसंद नहीं करता है कि मेरे घर के आगे कोई गाड़ी खड़ी कर दे। जो उनके घर का गेट अलग दिशा में है, ये से बाउंड्री वॉल है और रास्ता है, उस बाउंड्री वॉल के पास कोई अगर गाड़ी रखता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या करता है, या तो वो गाली देना शुरू करता है, अगर गाली से भी नहीं हटा, कोई रख के चला गया, उसको पता ही नहीं कोई कुछ बोल रहा है कर रहा है, उसको मालूम भी नहीं है, तो जब देखता है कोई आया नहीं उसके गाली गलौज से भी चिल्ला चोट से भी, तो क्या करता है, अपने घर का जूठन उसकी गाड़ी के ऊपर डाल देता है ना, उसकी आदत है। सब लोग बोलते हैं अरे भाई रास्ता तुम्हारा नहीं है, हम तो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं ना, बाउंड्री वॉल तुम्हारा है तो ठीक है, तुम्हारे बाउंड्री के अंदर तो हम नहीं जा रहे हैं, बाहर गाड़ी खड़ी कर दिए, तुम्हारे गेट के सामने भी नहीं करते हैं, गेट तुम्हारा दूसरी दिशा में है, तुम ऐसे क्यों बोलते हो। पर वो बहुत बहुत गुस्सा करता है, बहुत बोलता है वो, तो देखा कि वो सबके ऊपर ऐसा ऐसा करता है, तो हमने क्या किया, उसको सुबह सुबह शुभ भावना शुभ कामना का दान देना शुरू किया कि आप तो बड़े अच्छे हो, सज्जन व्यक्ति हो, आप बहुत समझदार हो, आप सबका सहयोग भी करते हो, लेकिन फिर आप ऐसा क्यों करते हो, ये ऐसा नहीं करो। हमने उनको संकल्प दिया, 3 दिन देने के बाद देखा कि उसने बोलना बंद कर दिया, नहीं करता है, छोड़ दिया उसने। तो ये चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं आपको सिर्फ इंसान नहीं लेकिन जंतु जानवर के पास भी ये बातें पहुंचती है। ये मैंने सुना है क्लास, सूरज भाई जी की क्लास में मैंने सुना है, तो मैंने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि हमारा जो एक आंगन है उस आंगन में सूरज नफली होता है ना, सूरज नफली का झाड़ बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और वो फूलों को रोज गिलहरी, ढेर सारी गिलहरी आकर रोज उन फूलों को खा जाती है और गिरा जाती है। तो हमारी बहने कहने लगी दीदी सूरज न फली तो एक भी नहीं निकलेगा, कैसे मिलेगा हमको ये फली, ये तो रोज गिलहरी, ये देखो फूल कितना, रोज इतने इतने फूल झड़े हुए नीचे। तो मैंने संकल्प देना शुरू किया गिलहरी को कहा, गिलहरी तुमको अगर खाना है तो तुम एक डगाली पकड़ो और उसमें से खाना शुरू करो, जितना खाना है उतना पूरा खाओ, गिराओ नहीं, जो गिराओगे उसको भी नीचे आकर खा लेना, पर दूसरी डगाली को नहीं पकड़ो क्योंकि उसमें से जो फली निकलेगी वो हम खाएंगे, तो तुम हमारे लिए भी छोड़ो उसको। उसको हमने संकल्प दिया और आपको बताऊं दूसरे दिन गिलहरी एक डगाली में गई, दूसरी डगाली में नहीं आई। इतना अद्भुत, मैंने कहा देखो ये सब कैसे समझते हैं। तो उसके बाद आया ही नहीं, वो दूसरी डगाली को नहीं पकड़ा और वो एक ही डगाली से खाया। तो ऐसे ऐसे संकल्प भी बाबा कहते, संकल्प शुभ भावना शुभ काम। आप अगर उसको भगाने की कोशिश करोगे, उसको मारने की कोशिश करोगे, फलाना व्यक्ति ऐसा बोलता है उसको आप डांटना फटकारना शुरू करोगे या उसके ऊपर जुल्म करोगे, अपना बाहुबल दिखाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे तो अपने को भी नुकसान होगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिक रीति है, स्पिरिचुअल मेथड है, ये मेथड कितना कारगर है, ये अंतिम समय यही हमें पास कराएगी, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। और अनेक जगह अनेक उपाय करेंगे मारपीट करने की, लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें अपने देवत्व को बरकरार रखना है। हमें बाबा मानव से देव बना रहे हैं, दुनिया वालों ने मानव को दानव बना दिया, पर बाबा तो देव बना रहे हैं और हमें ऐसा देव बन करके चलना है और हमें खुद को भी सुखी बनाना है ना, दुखी तो नहीं बनाना है। इसीलिए खुद को सुख देने के लिए ये सब जो आध्यात्मिक मेथड है ये हमें अपने जीवन में लागू कर लेना है। कोई भी प्रकार के कोई भी बातें आती है अपने घर में, कोई परेशानी, शुभ भावना शुभ कामना का दान करूं, पूरा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत धन्यवाद दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही अनुभव युक्त और प्रैक्टिकली हम कैसे अपने शुभ संकल्पों से छोटी छोटी बातों को, समस्याओं को दूर कर सकते हैं अपनी शुभ भावना के संकल्पों से, वो अनुभव युक्त बातें हम सबको बताई और हम सबके ज्ञान रत्नों से झोली भरी। हम सभी पुनः दीदी का धन्यवाद करते हैं।